नमस्कार भारत 25 जुलाई दिन शनिवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 2 दिन की यात्रा पर कीनिया पहुंचे, एक दूसरे से क्या चाहते हैं दोनों देश।
सोमालिया में काफी कोलैबोरेशन है यूएस के साथ एंड अफ्रीकन यूनियन के साथ, और ड्रोन्स के अटैक होते रहते हैं।
मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से एनडीए करेगा चुनाव अभियान की असल शुरुआत, लोगों की मोदी से क्या है उम्मीदें।
1.25 साल के बाद तो उनको आज बिहार की याद आई है कि बिहार में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, हम लोग को उनसे उम्मीद है कि बिहार के लिए कुछ कर जाए।
सुनिए मसान फिल्म की समीक्षा और हफ्ते भर की खेल हलचल, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कीनिया पहुंच गए हैं। कीनिया बराक ओबामा का पैतृक घर है और बतौर राष्ट्रपति वे पहली बार कीनिया पहुंचे हैं। नैरोबी हवाई अड्डे पर कीनिया के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने उनका स्वागत किया। ओबामा की यात्रा के मद्देनज़र कीनिया की राजधानी नैरोबी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति ओबामा रविवार को इथियोपिया पहुंचेंगे, जहां वे अफ्रीकी यूनियन को संबोधित करेंगे। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के सीरिया स्थित ठिकानों पर तुर्की के विमानों ने बमबारी की है। इस चरमपंथी संगठन के खिलाफ तुर्की का यह पहला हवाई हमला है। इसके अलावा तुर्की अब अमरीकी विमानों को इन चरमपंथियों के ठिकानों पर हमला करने के लिए अपने बेस का भी इस्तेमाल करने देगा। हालांकि तुर्की ने इन हमलों की अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन स्थानीय मीडिया का कहना है कि तुर्की ने सीरिया के हवाई क्षेत्र में रहकर ही IS नामक संगठन पर हमला किया। चिली की एक जज ने 7 पूर्व सैनिकों को 2 छात्रों को जिंदा जलाने का दोषी पाया है। 1986 में जनरल ऑगस्तो पिनोचेट की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 2 छात्रों रोड्रिगो रोजास और कार्मन ग्लोरिया क्विंटाना पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी, जिसमें से रोजास की मौत हो गई थी। इसमें से 6 सैनिकों को हत्या और 1 को इनका साथ देने का दोषी पाया गया है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब एक पूर्व सैनिक ने कोर्ट में अपने बयान को बदल दिया। इस मामले में अपील करने वाले मारियो करूजा ने कहा,
6 en calidad de autor de homicidio calificado en el caso de
रोड्रिगो रोगास की मौत के मामले में दोषी पाए गए सैनिकों पर 6 अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं। वहीं कार्मन ग्लोरिया क्विंटाना के मामले में दोषियों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। मामले में अपील करने वाले मारियो करूजा के शब्द। अमेरिका के लुसियाना राज्य के लाफियत शहर में गुरुवार को गोलीबारी करने वाले व्यक्ति के बारे में पुलिस ने कहा कि उसने अपनी बंदूक एक सामान गिरवी रखने वाली दुकान से खरीदी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि हमलावर जॉन आर हाउजर हमले के दिन से पहले भी कई बार उस सिनेमा हॉल में रेकी करने के लिए जा चुका था। पुलिस के अनुसार उसके होटल के कमरे से भेज बदलने की भी कई चीज़ें बरामद हुई हैं। लुसियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल ने कहा कि हमलावर ने बहुत ही सोच समझकर कदम उठाया है, लेकिन अभी तक उसके इरादों का पता नहीं लग सका है। अमरीकी न्याय विभाग का कहना है कि उसका इसराइल के लिए जासूसी करने वाले जोनाथन पोलार्ड को वक्त से पहले छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और उन्हें अपनी 30 साल की सज़ा पूरी करनी होगी। अमरीकी नौसेना के पूर्व खुफिया अधिकारी रहे पोलार्ड को इसराइल को गुप्त जानकारियाँ मुहैया कराने का दोषी पाया गया था। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 2 दिन के दौरे पर कीनिया जा पहुंचे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ये मौका है जब वो कीनिया पहुंचे हैं। कीनिया उनका पैतृक घर है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ अमल चौधरी।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का विशेष विमान एयरफोर्स 1 नैरोबी हवाई अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार रात 8:10 पर उतरा, उसी देश में जहां उनके पिता का जन्म हुआ था। नैरोबी हवाई अड्डे पर कीनिया के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने हाथ मिलाकर और गले लगाकर बराक ओबामा का अभिवादन किया। ओबामा ने अपनी सौतेली बहन ओमा को भी गले लगाया और इसके बाद वो अपनी लिमोजीन में बैठकर होटल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मौजूद लोगों ने भी बराक ओबामा का अभिनंदन किया। नैरोबी में राष्ट्रपति ओबामा की मौजूदगी के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी नैरोबी आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के चलते आम लोग भी अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर लोग ओबामा के आने से काफी उत्साहित हैं। ऐसे में एक व्यक्ति ने BBC से कहा,
ओबामा इज कमिंग, वी आर हैप्पी अबाउट दैट एंड वी आर हाईली वेलकमिंग।
ओबामा आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं और उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। नैरोबी के एक स्थानीय व्यक्ति के शब्द। एक अन्य स्थानीय व्यक्ति का कहना था,
इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस वेटिंग फॉर द बराक ओबामा टू कम टू केन्या एंड देन।
बराक ओबामा का कीनिया आने का इंतजार करना एक बहुत ही अच्छा अनुभव है और हमें खुशी है कि वो हमारे इलाके से भी गुजरेंगे। यहाँ कई लोग बहुत वर्षों से रह रहे हैं। यहाँ के सभी लोग उन्हें और उनकी मशहूर बीस्ट कार को देखने का इंतजार कर रहे हैं। कीनिया बराक ओबामा का पैतृक घर है और बतौर राष्ट्रपति वे पहली बार कीनिया पहुंचे हैं। 2 दिन की इस यात्रा में ओबामा कीनिया के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा और अन्य शीर्ष अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ओबामा ने इससे पहले BBC से कहा था कि वे समलैंगिकों के अधिकारों और उनके साथ भेदभाव के मामले में अफ्रीकी नेताओं को कड़ा संदेश देंगे। कीनिया के बाद ओबामा इथोपिया भी जाएंगे, जहां वे अफ्रीकी यूनियन को संबोधित करेंगे। अफ्रीकी यूनियन को संबोधित करने वाले बराक ओबामा अमरीका के पहले राष्ट्रपति होंगे।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की कीनिया यात्रा का क्या महत्व है, यही समझने के लिए हमारे सहयोगी विनीत खरे ने नैरोबी में विश्व बैंक में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार अनिल भंडारी से बात की।
लास्ट काफी बरसों से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोलैबोरेशन हैज बीन सिक्योरिटी में, क्योंकि सोमालिया जो है वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं अबाउट अल शबाब एंड टेररिज्म। अभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ओबामा बिजनेस इंक्रीज करेगा। उसके साथ डेलीगेशन में 1,500 टॉप बिजनेसेस इंक्लूडिंग जनरल मोटर्स, गूगल, ट्विटर, सब IBM। तो केन्या के लिए एक तो एनहांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी है और दूसरा कि ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज बढ़ जाएगा।
सिक्योरिटी के लिहाज से केन्या और अमेरिका को एक दूसरे की कितनी जरूरत है?
बहुत। सोमालिया में काफी कोलैबोरेशन है US के साथ एंड अफ्रीकन यूनियन के साथ, और ड्रोन्स के अटैक होते रहते हैं। वो जो लीडर था जिसने वेस्ट गेट में यहाँ टेररिस्ट अटैक किया था जिसमें 67 लोग मर गए थे, ही हैज बीन किल्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ द US।
ये जो विजिट है सर, इसकी आलोचना भी हो रही है, जो केन्या का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है उसको लेकर आलोचना होती है, इस पर केन्या में क्या कहा जा रहा है?
केन्या में जो सरकार है उसने साफ कहा है कि दे वेलकम ऑल डिस्कशंस। ओबामा ने साफ कहा कि वो आएगा, वो सही सही बात करेगा जो उसने दिल में है, जो उसको कहना है, और गवर्नेंस पे वो जरूर एम्फसिस देगा। और गवर्नमेंट को ये भी मालूम है कि हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कंपेयर टू ईस्ट अफ्रीका इतना भी वो खराब नहीं है, क्योंकि और कंट्रीज तो बहुत वर्स्ट है हमारे से।
ये एक सोच है कि भाई अमरीका को एक चिंता है कि जिस तरह से चीन अपने पांव पसार रहा है अफ्रीका में और एक इन्फ्लुएंस है वहां पर, उस लिहाज से इस यात्रा को, इस विजिट को कैसे देखा जा रहा है?
चीन का असर बहुत है अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में और केन्या में, और हिंदुस्तान का भी काफी है। लेकिन अमेरिका का जो रिलेशनशिप केन्या के साथ, वो इंडिपेंडेंस से भी पहले बहुत चल रहा था, तो वो गवर्नमेंट का आइडिया ये है कि उसको एट पार लाना। और चीन के साथ बेशक रिलेशंस अच्छे हैं वगैरह, लेकिन हिस्टोरिकल टाइज, डेमोक्रेटिक टाइज, जो अभी ओबामा का फादर है, उसका ग्रैंडफादर है, वो सब अमेरिका वाली गए थे और वहीं से इनको उनकी एजुकेशन वगैरह मिली है। सो गवर्नमेंट फील्स के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जितना होना चाहिए उतना नहीं है, और चीन और हिंदुस्तान और यूरोप काफी ट्रेड कर रहा है, तो क्यों नहीं यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर यूनाइटेड स्टेट लिबरलाइज कर दे, जैसे कि AGOA ट्रीटी है एग्रीकल्चर की, या डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो डेफिनेटली चीन का असर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा यहाँ।
क्या केन्या में इस तरह की फीलिंग भी है कि अब राष्ट्रपति ओबामा अपने दूसरे टर्म में हैं और पहली बार केन्या आए हैं, तो आने में बहुत देर उन्होंने लगा दी है?
मेरा ख्याल है वो खुद वेट कर रहे थे, क्योंकि अदरवाइज एम्बैरेसमेंट भी हो सकती थी, टाइमिंग ठीक नहीं थी। बट नाउ उन्होंने प्रॉमिस भी किया अपनी स्टेप ग्रैंड मदर को कि मैं जरूर आऊंगा, तो टाइमिंग अब ठीक है।
बराक ओबामा की कीनिया यात्रा का विश्लेषण कर रहे थे नैरोबी में विश्व बैंक के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार अनिल भंडारी।
सदियों से गूंजती आवाजें।
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऐसे लोग जिन्होंने गढ़ा हमारा मन, जो आज भी धड़कते हैं हमारी संवेदना में,
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
जिनके बिना भारत ऐसा भारत ना होता।
मैं तो हूँ विश्वास में,
प्रोफेसर सुनील खिलनानी के साथ उस अतीत की यात्रा जो बीता नहीं बल्कि हम में जीता है। भारतीयता के अमर शिल्पियों पर बीबीसी की स्पेशल सीरीज फैला उजियारा, पहला प्रसारण रविवार को दिनभर में और पुनः प्रसारण मंगलवार विश्व भारती में।
रुख करते हैं भारत का, जहां यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे डॉक्टर आर के पचौरी को पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था टेरी के महानिदेशक पद से हटा दिया गया है। ये फैसला टेरी की प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया। टेरी की ओर से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में डॉक्टर पचौरी पर लगाए गए आरोपों का जिक्र नहीं किया गया है, जिसकी कई हलकों में आलोचना हो रही है। हमारे साथी विनीत खरे ने इन आलोचनाओं पर टेरी की प्रशासनिक परिषद की सदस्य डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ से बात की।
आजकल सब क्रिटिसिज्म ही करते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं देख रहे हैं कि गवर्निंग काउंसिल ने ये अच्छा डिसीजन लिया है, जिससे वी हैव अपॉइंटेड अ न्यू डायरेक्टर जनरल अजय माथुर, और हमने अभी इस इशू को अच्छी तरह हमने रिजॉल्व किया है, ताकि पचौरी साहब अभी कुछ रोल नहीं प्लेस करेंगे ये टेरी में आइंदा से।
लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें कहा गया है कि उन्होंने टेरी को बनाया, 34 साल लगाए, लेकिन उन पर जो आरोप हैं उनका जिक्र क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें हटाया गया है इन्हीं आरोपों के कारण। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि जो टेरी का जीसी है उस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता?
नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आई थिंक एक तो बात सही है कि उन्होंने काफी सालों से ये टेरी को अच्छी तरह उन्होंने बिल्ड किया है, लेकिन ये भी ठीक नहीं करके ये बात है कि नथिंग हैज बीन डन, क्योंकि ये सब इन्वेस्टिगेशन सब किया जा रहा था और हाई कोर्ट में भी ये केस चल रहा था। तो ऐसी बात नहीं है कि हम बाहर के लोग जो भी कुछ समझते हैं और सोचते हैं तो हमें उस पे हमको रिएक्शन करना चाहिए ना। तो गवर्निंग काउंसिल ने ये सब ड्यू प्रोसेस फॉलो करके दे डोंट वांट टू बी सब जुडिस, और उन्होंने ये अच्छी तरह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है।
वरिष्ठ वकील हैं वृंदा ग्रोवर, उन्होंने कहा है कि जो बड़े लोग हैं कॉर्पोरेट के, महिलाएं पुरुष, वो बच के निकल जाते हैं।
इस बारे में मुझे कुछ कमेंट नहीं करने के हैं। मैं मौजूद नहीं थी क्योंकि मेरी बोर्ड मीटिंग चल रही थी उसी टाइम पे, तो मैं तो मौजूद नहीं थी, लेकिन आई हैव गॉट द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्निंग काउंसिल कि ये सब डिसीजन उन्होंने लिया है।
ये थी टेरी की प्रशासनिक परिषद की सदस्य डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ।
बीबीसी इंडिया बोल।
यौन शोषण के आरोपों में घिरे जाने माने पर्यावरणविद आर के पचौरी को टेरी प्रमुख के पद से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को दफ्तरों में यौन शोषण से बचाने के लिए 1997 में दिशा निर्देश दिए थे, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है। हाल ही में खबर आई कि केंद्र सरकार ने पीड़ित महिलाओं को खास मामलों में बिना वेतन काटे 3 महीने की छुट्टी देने की बात कही है। तो सवाल यह है कि क्या महिलाओं के लिए दफ्तरों में अपने प्रति हुए बदसलूकी की शिकायत करना अब आसान हुआ है? इस शनिवार बीबीसी इंडिया बोल में बहस का यही होगा मुद्दा। मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1800 102 7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत, संदीप सोनी के साथ। बात बिहार की, जहां मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली को भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए चुनाव अभियान की असल शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी की रैली के बारे में स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
मोदी जी के आने के उपलक्ष्य में कानून व्यवस्था काफी अच्छी लग रही है, सही हुई है। समय मिली तो जरूर जाएंगे, नहीं तो फिर टीवी पे ही देख के सुन लेंगे उनको कि क्या वो बिहार के लिए दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। उनसे ऐसे तो हम लोग को सारी उनसे आशाएं हैं कि बिहार के लिए कुछ अच्छा नया कर जाए।
77 के बाद पहला बार जो है बिहार के लोगों के जोश है कि कोई पीएम यहाँ आ रहे हैं।
बिहार में तो परिवर्तन आना ही चाहिए। उनकी रैली सबसे ज्यादा विशाल रैली हो रहा है। लोगों को उत्साह है कि इनकी रैली देखें, उनकी चेहरा को देखें। यहाँ हम लोग चाहते हैं कि दो चार कारखाना होना चाहिए मुजफ्फरपुर में और किसान को खाद पानी बढ़िया ढंग से मिलना चाहिए जो किसान अपने अन्न उपजा सके अपने खेत में और आगे बढ़ सके।
1.25 साल के बाद तो उनको आज बिहार की याद आई है कि बिहार में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया कि हम लोग से उनके हम लोग को उनसे उम्मीद है कि बिहार के लिए कुछ कर जाए।
ये आवाजें हम तक पहुंचाई थी हमारे सहयोगी मनीष शांडिल ने। और आइए अब सीधे चलते हैं मुजफ्फरपुर मनीष शांडिल के पास ये जानने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले स्थानीय अखबारों में क्या कुछ छपा है आज। मनीष, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएं स्थानीय अखबार किस रंग में रंगे हैं आज।
हिंदी अखबारों की बात करें संदीप, तो जो हिंदी अखबारों के पाठक हैं वो आज सबसे पहले अपने अपने घरों में सुबह जब अखबार हाथ में लेंगे तो उन्हें एक नारे के साथ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का चेहरा दिखेगा। नारा ये कि हर बिहारी का अधिकार, विकसित और समृद्ध बिहार।
ये विज्ञापन तो ये विज्ञापन होगा मुझे लगता है।
जी हाँ, ये जो तीन बड़े अखबार मुजफ्फरपुर से निकलने वाले भी मेरे हाथों में है हिंदी के, प्रभात खबर, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण, तीनों का पहला पन्ना इसे जैकेट कहा जाता है वो विज्ञापन के रूप में है जिसके ऊपर सामने की तरफ से नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर और अमित शाह की तस्वीर है और ये नारा है जो मैंने भी पढ़ के सुनाया। जहाँ तक अपने अपने अखबारों में अलग अलग अखबारों में इस रैली को जगह मिलने की बात है तो तीनों जिन अखबारों को मैंने जिक्र किया उनकी जाहिर है कि पहली खबर रैली को लेकर के ही है। प्रभात खबर ने आज की रैली को शीर्षक दिया है सबकी नजर ऐलान पे। उसने ये बताया है कि क्या क्या घोषणाएं आज प्रधानमंत्री कर सकते हैं और दिलचस्प ये कि इससे ही संबंधित एक कार्टून हिंदुस्तान अखबार में है कार्टूनिस्ट पवन का, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बिहार पैकेजिंग एयरलाइंस से पटना में उतर रहे हैं और नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि बुके बाद में पहले जल्दी जल्दी गिफ्ट सब उतरवाइए, पूरा विमान भर सूट समेत लाए हैं।
और बताएं
जी, दूसरे अखबारों की बात करें तो अंग्रेजी का जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया वो कहता है कि माझी और नीतीश आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। दैनिक जागरण ने खबर बनाई है कि नमो बिहार को देंगे अरबों की सौगात। अखबार का अपना आकलन है कि लगभग 76,000 करोड़ की योजनाओं का आज उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। हिंदुस्तान ने भी पहली खबर आज की रैली को ही बनाया है लेकिन उसने जोर दिया है जो तैयारियां हैं इस रैली को लेकर के उससे संबंधित, खास करके जो सुरक्षा संबंधी तैयारियां हैं। उसका हिंदुस्तान अखबार की हेडिंग है कि पीएम को कोई नहीं पहना सकेगा माला। उसने ये वजह बनाई है कि जो मानव भंग की आशंका है उसको लेकर ऐसे ऐसे इंतजाम किए गए हैं और रैली पे आज चप्पे चप्पे पे सुरक्षा है। ये तो पहले पन्ने पे जो खबरें हैं लेकिन जो स्थानीय अखबार हैं उसके अंदर उनके अंदर के पन्नों पे किसी अखबार में तीन पन्ने किसी में चार पन्ने बिल्कुल इस रैली से जुड़ी तस्वीरों और तैयारियों से जुड़ी हुई है। हर छोटे बड़े तैयारी की डिटेल दी गई है, कल क्या हुआ, आज क्या होगा, क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं इस रैली को लेकर के, तो पूरा अखबार आज कह सकते हैं कि रैली में है।
जी, बहुत 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 शुक्रिया मनीष शांडिल समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए। और आइए जानते हैं आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, बता रहे हैं अमल चौधरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली करने वाले हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए CBSE आज ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT दोबारा आयोजित करा रहा है। पिछली बार पेपर लीक होने के बाद CBSE इस बार काफी एहतियात बरत रहा है। पिछले महीने मैगी पर प्रतिबंध की वजह से चर्चा में आए नेस्ले इंडिया में प्रबंधन स्तर पर बदलाव हो रहा है। आज से सुरेश नारायण नेस्ले इंडिया के महाप्रबंधक का पद संभाल रहे हैं। इसके अलावा भारत के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज ईरान रवाना हो रहा है, जो ईरान से आयात किए गए तेल की बकाया राशि चुकाने के तरीके पर चर्चा करेगा। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज कीनिया की राजधानी नैरोबी में वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। खेल की खबरों में आज प्रो कबड्डी लीग में पहला मुकाबला बेंगलुरु बुल्स और पुनेरी पल्टन के बीच कोलकाता में रात 8 बजे से शुरू होगा। वहीं दूसरा मैच बंगाल वॉरियर्स और दबंग दिल्ली के बीच कोलकाता में ही रात 9 बजे से शुरू होगा।
इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर जिस फिल्म ने दस्तक दी है उसका नाम है मसान। कैसी है ये फिल्म, आइए जानते हैं सुमिरन प्रीत कौर से।
बीबीसी बनारस बहुत फिल्मों में बहुत गानों में आया है।
हम हैं बनारस बाबू, खई के पान बनारस वाला।
वेल, अब एक फिल्म आई है जिसमें बनारस जो है वो बैकग्राउंड में है और कहानियां सामने है। आ रही है फिल्म मसान, जिसमें है ऋचा चड्ढा।
बाट न पाया मीठा पानी और छोर की दूरी रे।
मसान फिल्म को डायरेक्ट किया है नीरज खेवान ने, इसको प्रोड्यूस किया है अनुराग कश्यप की फैंटम फिल्म्स ने। ये फिल्म 2015 के कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई जा चुकी है, 2 अवार्ड्स भी जीत चुकी है। इसमें ऋचा चड्ढा देवी पाठक का रोल निभा रही हैं, विकी कौशल हैं, संजय मिश्रा हैं, श्वेता त्रिपाठी हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी। अर्णब, मसान कैसी लगी आपको?
मसान एक बहुत अनयूजुअल स्टोरी है। शमशान घाट या क्रिमेटोरियम या क्रिमेशन ग्राउंड से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनकी कहानी है। खास तौर से कुछ पात्र ऐसे हैं इसमें जो शमशान घाट के पास में रहते हैं या वहाँ पर काम करते हैं या मुर्दे जलाते हैं, सीधी भाषा में कहा जाए तो। उनकी लाइफ कुछ हद तक अलग भी होती है, जो करने वाले वो बहुत सहज ढंग से देखते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसे कुछ पात्र हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो मसान उन लोगों की कहानी है, और ऐसा नहीं है कि रोज़ अगर वो मुर्दे देखते हैं तो उनके लिए ये बहुत कैजुअल सी चीज़ है। और उसके साथ ही एक मेटाफर है गंगा के रूप में, जो गंगा बनारस में भी है और प्रयाग में जाके कल्मिनेट होती है इस फिल्म में। एक लड़का है इसमें, एक विकी कौशल नया लड़का है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है उसने। वो सिविल इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन उसके पिताजी और बड़े भाई मुर्दे जलाते हैं रोज, तो उसको भी यही करना पड़ता है। एक बहुत अजीब सी बात है मसान में, 3 कहानियां हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं, भिन्न हैं। यानी एक टीचर हैं जो संजय मिश्रा जी बने हैं, और वो घाट के पास काम करते हैं। अचानक उनको पता चलता है कि उनकी बेटी का MMS बन गया है, और जिसकी वजह से वो परेशान है, तो वो पैसा देना पड़ता है उनको पुलिस को। तो इन सब का जो ताना बना बुना है नीरज घेवर ने, बहुत ही एक अनोखा है।
तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता।
गाना बहुत ही अनयूजुअल है, इसमें म्यूजिक इंडियन ओशन का है, तो जाहिर है कि बिल्कुल घाट के ऊपर, और प्रेम जो एक छोटे सी एक प्रेम कहानी है जो विफल हो जाती है, उसके ऊपर जो एक बैकग्राउंड में ही चलता है। यहाँ कोई लिप सिंक वाले गाने नहीं है, बहुत ही मर्मस्पर्शी और बहुत दिल को छूने वाले गाने हैं। और जिस जगह पे वो यूज किए गए हैं, वरुण ग्रोवर के लिरिक्स हैं, वो भी कहीं कहीं रुला देते हैं। मसान जैसी फिल्में बहुत कम आती हैं, खास तौर से ऐसे लोग जो जिनका रोज़ का काम है मुर्दे जलाना, और अपनी तरफ से वो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्या मनोवृत्ति होती है, किस तरह की सोच होती है, ये इस फिल्म से हमें पता चलता है। मैं मसान को 5 में से 4 दूंगा।
और अब हफ्ते भर की खेल हलचल के साथ आदेश कुमार गुप्त।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। बीते गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति ने आगामी श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। विराट कोहली की कप्तानी में खेलने वाली इस टीम में लेग स्पिनर अमित मिश्रा की साल 2011 के बाद वापसी हुई है। टीम में केएल राहुल की भी वापसी हुई है, जो बांग्लादेश दौरे पर नहीं थे। टीम में शिखर धवन, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा, स्पिनर आर अश्विन, हरभजन सिंह और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव और वरुण एरन भी शामिल हैं। चयन समिति के अध्यक्ष पूर्व बल्लेबाज संदीप पाटिल ने विराट कोहली के रवैये की पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से तुलना करते हुए कहा,
कप्तान चेंज होने के बाद इफेक्ट तो होगा ही, क्योंकि हर एक का तरीका, नजरिया अलग अलग होता है, देखने का, खिलाने का, लीड करने का। कोई ऑफेंसिव होता है, कोई डिफेंसिव होता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन ऑफेंसिव ज़्यादा है या डिफेंसिव ज़्यादा है, बट जैसा कप्तान होता है ऐसा वो पीरियड चलता है। हमने देखा है कि जब धोनी कप्तान थे हमारे टेस्ट टीम के, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इंडियन टीम का और इंडियन प्लेयर्स का रहा है, और उम्मीद करते हैं कि विराट, जो अभी अभी उनकी नई शुरुआत है, तो ये बोलना सही होगा कि आगे क्या होगा। नया कप्तान है, नई टीम है, हमारा जॉब यही है कि जो अच्छा टैलेंट हो उससे बैक करना।
वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच गाल में 12 अगस्त से खेला जाएगा। उधर दक्षिण अफ्रीका और मेजबान बांग्लादेश के बीच चटगांव में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन कल बारिश की भेंट चढ़ गया। इससे पहले खेल के तीसरे दिन स्टंप के समय दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 61 रन बनाए थे। वैसे पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका अभी भी बांग्लादेश से 17 रन पीछे है और उसके 10 विकेट बाकी हैं। और अब बात हॉकी की। पिछले दिनों भारतीय हॉकी टीम के चीफ कोच नीदरलैंड्स के पॉल वन एस ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि हॉकी इंडिया ने उन्हें उनके पद से हटा दिया है, जबकि हॉकी इंडिया ने इसका ऐलान नहीं किया। लेकिन अब उनकी छुट्टी लगभग तय है, क्योंकि कल विशेष समिति ने उन्हें उनके पद से हटाने की सिफारिश कर दी है। इस 9 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष पूर्व ओलंपियन हरबिंदर सिंह ने बीबीसी से खास बातचीत में कहा,
देखिए पॉल ने जो ही वाज चीफ कोच ऑफ द टीम कहा था, अपनी रिपोर्ट भेजी, जितने भी ऑफिशियल साथ गए हैं तो सबकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट ही नहीं भेजी। 17 तारीख तक वो एक सिलारू में ऑलरेडी कैंप चल रहा था, जो कि फ्रांस और स्पेन में टीम ने जाना है 31 को टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तो वहाँ भी रिपोर्ट नहीं की उन्होंने, ना ही उन्होंने रिपोर्ट भेजी। तो हमने तो डिस्कस किया, तो जब उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे कि वो टीम में से रहना चाहते हैं, तो इसलिए उनके नाम को कंसिडर नहीं किया गया।
और अब बात बैडमिंटन की। रशियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों के लिए कल मिला जुला दिन रहा। महिला एकल वर्ग में भारत की तन्वी लाड रूस की इवगेनिया कोत्सेस्काया से कड़े संघर्ष के बाद 26-28, 21-13, 21-19 से हार कर बाहर हो गई। लेकिन पुरुष युगल वर्ग में तीसरी वरीयता हासिल भारत के बनुअत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी को रूस की विरोधी जोड़ी के खिलाफ वॉकओवर मिला और उसने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। पुरुष एकल वर्ग में तीसरी वरीयता हासिल भारत के अजय जयराम ने पांचवी वरीयता हासिल मलेशिया के वेई चोंग फेंग को 21-15, 21-13 से हराया, तो वहीं मिश्रित युगल वर्ग में अक्षय दिवालकर और प्राजक्ता सावंत की जोड़ी ने फ्रांस के रोनान लाबार और एमिली लेफेल को 21-18, 21-18 से हराया। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
प्रमुख विश्व समाचार एक बार फिर अमल चौधरी से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कीनिया पहुंच गए हैं। कीनिया बराक ओबामा का पैतृक घर है और बतौर राष्ट्रपति वे पहली बार कीनिया पहुंचे हैं। नैरोबी हवाई अड्डे पर कीनिया के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने उनका स्वागत किया। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के सीरिया स्थित ठिकानों पर तुर्की के विमानों ने बमबारी की है। इस चरमपंथी संगठन के खिलाफ तुर्की का यह पहला हवाई हमला है। चिली के एक जज ने 7 पूर्व सैनिकों को 2 छात्रों को जिंदा जलाने का दोषी पाया है। 1986 में जनरल ऑगस्तो पिनोचेट की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 2 छात्रों रोड्रिगो रोजास और कार्मन ग्लोरिया क्विंटाना पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत के पहले अंक में इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक पूरी टीम को अनुमति दीजिए।